رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج ہم دیکھیں گے سبق نمبر، جی سر دفعہ بتائیے سبق نمبر، سب بول دیں، سبق نمبر 9 ہے، پیج نمبر 35 ہے بک کا، ہم کم اور تم. بہت ہی آسان ہے، اگر آپ پچھلے والے کو ذہن میں رکھیں تو اس سے ملات کے ہما کما تما اور یہ ہم کم تم، بس آپ یہ لگا لیں بغیر کچھ اور سوچے کہ وہاں کما تما ہما جو کچھ تھا وہ دو کے لیے تھا، یہاں وہ سب کچھ تین کے لیے ہوگا، باقی کوئی فرق نہیں. تو پہلی چیز جو میں نے آپ کو ایک ٹوٹکا بتایا ہے اس کو یاد کرنے کا، وہ نوٹ کر لیں کہ ہما کما تما کے اندر جو چیز تثنیہ کے لیے تھی وہ یہاں جمع کے لیے آئے گی، یہ بنیادی فرق ہے، باقی جو کچھ بھی آپ پڑھیں گے دیکھیے گا اسی کے اندر ہوگا. تو آئیے ذرا تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ دونوں کس کے لیے ہوتی تھی؟ جو کما تما یہ تثنیہ کے لیے تھی نا، اور وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے تھی. کبھی بھی گرامر آپ پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ میں نے بیس پڑھنی ہے، تو آپ کو ایک چھوٹا سا آج ایک اصول بتا دوں نویں سبق پہ پہنچ کے. آپ لوگ آج کا ہوم ورک کے طور پہ یہ چیز لکھیں گے بھی، بالکل ایک شجرا بنائیے، جیسے میپ ہوتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کی ڈیٹیل تفسیر ہے آن لائن پہ، سوری جو ڈیٹیل گرامر ہے جو آپ کو گرامر کے سیکشن میں کرائی جا چکی ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک سبق پھر اس کے ساتھ دوسرے کا رب، پھر تیسرے کا، پہلے کیا ہے، حرف ہے، کلمہ ہے، اسم ہے، فعل ہے، پھر اسم کی علامتیں، پھر اس لحاظ سے جتنی ابھی تک ہم نے گرامر کی ہے نا، آپ سب نے ایک چارٹ بنا کے لانا ہے. نوٹ بک پہ نہیں آئے گا، یہ آپ کے چارٹ پہ آئے گا. کوشش کریں چھوٹے سے چھوٹے صفحے پہ صاف ستھرے طریقے سے رائٹنگ میں لگائیں، اور وہ چارٹ اگر آپ کے لیے یہاں لگا دیا جائے گا نا، تو آپ دیکھیں گے کمپیئر کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ایک اصول ہے کہ چیزیں اپنے اسداد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں، تقابل کے ساتھ. تو ہم انشاءاللہ جب پچھلا ساتھ ساتھ روز دیکھتے بھی رہیں گے نا، تو آپ دیکھیے گا جب یہ بک ختم ہوگی نا، تو آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کم از کم قرآن پاک کا ترجمہ یاد کر چکے ہوں گے، اس میں آپ کو غلطی نہیں ہوگی. جہاں لگے نا یہ کہ فوراً اسی میں سے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا کمپٹیشن ہے کون زیادہ اچھا بنا کے لاتا ہے. بہت نیٹ بنائیں، ایک کو ایک کلر کے ساتھ کر لیں تو دوسری تھوڑی، یعنی مین بہت زیادہ پھول بوٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا ہو کہ وہ ایک پیج پہ ایسے ہو. مجھے اپنی ایک ایکٹیویٹی یاد آ رہی ہے، ابھی میرے پاس ہوگی نہیں، پتہ نہیں کہاں، امریکہ میں کہیں ہوگی. ایک ٹاپک ہم پڑھتے ہیں آپ جس میں علوم الحدیث ہے، میں کہتی ہوں کہ سب سے مشکل ٹاپک لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں باقی علوم سے تقابل کریں تو گرامر آپ کو اس کے آگے بہت آسان لگے گی. وہ یاد ہی نہیں ہوتی چیزیں. تو میں نے جب اس کی تیاری کر رہی تھی ٹیسٹ کی، جب میں نے اس کو پڑھا، یقین کریں میں نے پوری جو ہماری بک تھی نا اس کو ایک پیج پہ لکھا، اور وہ پھر دیکھ کے کتنوں نے اس کو کاپی کیا، ماشاءاللہ اتنا فائدہ ہوا. اور مجھے لگے کچھ مشکل نہیں. مشکل کب لگتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں آج تو یار ہے، کل پتہ نہیں کیا تھا، بھول گئے. تو وہ روز پچھلا دیکھیں. پھر ایک اور ٹپ چھوٹی سی یاد رکھیے گا، جیسے نگلا پڑھنے لگے نا، ابھی جیسے ہم کرنے لگے ہیں، تو آپ اگر گھر سے آنے سے پہلے یا یہاں کے بریک میں یا کہیں پچھلے سارے پڑھ چکے ہو، انشاءاللہ تکرار کے ساتھ تہیں ڈفرینٹ لگتی جائیں گی اپنے ذہنوں پہ، تو آپ کو یہ چیز زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. تو یہ وہ کس کے لیے تھی؟ ہما کما تما واہ مذکر کے لیے بھی تھی، مؤنث کے لیے بھی تھی، تثنیہ کے لیے تھی. یہ کیا ہے؟ صرف مذکر ہے اور جمع ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اب ہم کہاں لگتا ہے. ہم یہ علامت کبھی الگ اور کبھی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ جملہ آپ نے پڑھا جو ابھی تک آپ نے پچھلے 8 سبقوں میں نہیں پڑھا، اور وہ کیا تھا؟ پیچھے جتنی بھی علامتیں تھیں نا، یا وہ اسم کے ساتھ آتی ہیں، یا فعل کے ساتھ، یا حرف کے ساتھ، لیکن اس کو ہم نے کیا پڑھا؟ کبھی الگ بھی آتی ہے، کسی کے ساتھ نہیں لگتا ہم آتی ہے. مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 36 میں آتا ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اب یہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا تو نہیں. النار کیا ہے پیچھے؟ شاباش، سب بولے. اس میں فی آگے کیا ہے؟ حرف ہے. تو یہ نہ اسم سے لگا ہوا ہے نہ فی سے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نارو ہم، یا ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہم فی، رائٹ؟ تو دیٹ مین جو کسی کے ساتھ نہیں لگتا وہ الگ ہے. یہ اس کی ایک یونیک چیز، اور ایسی یونیک چیزیں جو ہوں گی نا جس کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، اس کو ذرا بڑا لکھ لیں بولڈ لیٹرز میں، تھوڑا اس کو کیپیٹل کر لیں، تو انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. پھر اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت 179 و 179 میں آتا ہے، اولئک کل انعام بل ہم ادل، वो लोग तो जानवरों की तरह, बल्कि वो उनसे भी ज़्यादा गुमराह हैं। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल है? पूरे कुरान में आपने 100 टाइम हम पढ़ा होगा। अब इसकी हम भी पहचान देखेंगे कि इस्म फेल और हर्फ के साथ आए तो कैसे आती है। अस्मा के साथ अगर इस्म के साथ मिलकर इस्तेमाल हो तो तर्जमा अमूमन इन सब या फिर अपना अपनी अपने किया जाता है। मसलन आमालुहुम, क्या बोलेंगे इसके तर्जमे में? इन सब के आमाल। अलसिनतुहुम, इन सब की ज़ुबानें। जुलूदुहुम, इन सब के चमड़े। अरजुलुहुम, इन सब की टांगें या पाँव। सूरत अन्निसा आयत 56 में आता है, कुल्लमा नदीजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब इनकी खालें गल जाएंगी तो हम इन्हें और खालें बदल देंगे ताकि वो हमेशा अज़ाब का मज़ा चखते रहें। ठीक है, अब आप देखिए जुलूदुहुम, जुलूद क्या है? इसम है ना, तो इसम के साथ ये लग गया जुलूदुहुम। पहचान क्या है? ऊपर क्या था? आप कहेंगे कि फ़र्क नहीं लग रहा, या नोट कीजिएगा कि वहाँ भी तो अन्नार था, फिर आगे हुम है, लेकिन वो लफ्ज़ हम ये नहीं कह सकते नारी हिम अलग है, जबकि यहाँ खाली लफ्ज़ जुलूदू और हुम। अगर आप थोड़ी सी समझ से देखें ना इसको, तो एक आपको और भी चीज़ समझ आएगी कि यहाँ जुलूदू दाल के ऊपर पेश है। इसम के साथ कब है और इसम से अलग कब है, इसका फ़र्क एक आपको सिर्फ इन दो चीज़ों को तकाबुल में रखने से दिख रहा है कि वहाँ, हाँ अगर नारू होता ना तो फिर नारू हूँ मैं। अब आप समझे ज़रा, जो छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं ग्रामर की, और जो मतलब हम नोश ऐसी बोलते हैं और उनको जिनको आती है बोलनी वो सोचते होंगे हम करते क्या हैं। अब अगर हम किसी अरब से बात कर रहे हो तो हम नारू को नारी हिम कर दें तो वो हंसेगा ना। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि जहाँ रुकना था वहाँ रुके नहीं। असल में इसका ताल्लुक किससे था? असहाब से था, ओलाई का असहाबुन नार, यहाँ रुकेंगे। अगर मैं इसको एज अ लैंग्वेज बोलूँ, ओलाई का असहाबु अन नारी हिम हुम फी खालिदुन, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं कहूँ सदफ चली जाओ, मुझे क्या कहना चाहिए था? सदफ चली जाए, मुझे रुकना सदफ़ पे है ना। ये सिर्फ एक साइड पॉइंट आपको बता रही हूँ कि लैंग्वेज में बोलने से चीज़ों के रूल्स का कितना गहरा ताल्लुक होता है। तो जुलूदु हम जिल्द की जमा, तो यहाँ इसम के साथ ये लफ्ज़ आ गया। समझ आ रहा है ना? मैं तेज़ तो नहीं बोल रही, तेज़ बोल रही हूँ? अच्छा, फिर जी कहने से पहले सोचा करें कि मैंने कहा क्या। ठीक है, चलिए सूरत अल अनाम की आयत 159, 169 या 169 क्या होगा, जो भी होगा, इसमें आता है इन्नल्लज़ीन फर्रक़ू दीनहुम, ये वो लोग हैं जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने दीन को। अब आप देखिए यहाँ दीनहुम मिल रहा है। ठीक है, आगे हम एक और मिसाल देखेंगे, फिर आपको और फ़र्क समझ आएगा। सूरत नूर आयत 24:24 में आता है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अईदीहिम व अरजुलुहुम, उस दिन गवाही देंगे इनके खिलाफ इनकी सब, इन सब की ज़ुबानें और इन सब के हाथ और सबके, इन सब के पाँव। अब आप देख रहे हैं अल सीनतु हम भी आ गया, अर जुलू भी हम आ गया। अभी अगली दिखा के फिर आपको इसमें से एक छोटा सा रूल बताना चाहूँगी। अगर आपने कोई फ़र्क महसूस किया इन तीन मिसालों का? सदफ बहुत कीन सा फ़र्क है, शाबाश, गोहर, सिर्फ आराब की बात है। चले ज़बर और पेश के साथ आएगा तो ये इसम से मिलेगा, लेकिन ज़ेर के साथ नहीं मिलेगा। अब आगे आप इसकी मिसालें जब ख़ुद ढूंढेंगे तो आपको और भी पता चलेगा। तो बहरहाल आसान था, अपना अपनी उसकी उनके और टेक्स्ट को देख के इसका तर्जमा किया जा सकता है। इसीलिए जब हम आपका लफ्ज़ी तर्जमा लेते हैं तो उसमें कभी लफ्ज़ होते हैं ना, जैसे मिसाल है कि यही लफ्ज़ वहाँ आ जाता है अरजुलुहुम, तो कुछ स्टूडेंट लिखते हैं उनके पाँव और कुछ लिखते हैं अपने पाँव, तो हम दोनों का गलत नहीं करते। हालांकि हुम का असल मानी उनके होता है, लेकिन सम टाइम अपने के लिए आता है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। इसी तरह इसकी मिसाल देखेंगे अफ़ाल के साथ, फेल के साथ कैसे होगा। अगर हुम फेल के साथ इस्तेमाल हो तो तर्जमा उन्हें या उन सबको किया जाता है। मसलन तारीफ़ हुम, आप उनको पहचानते हैं। यनफाउ हुम, वो नफ़ा देता है इन सबको। यदुर्रुहुम, वो इनको नुकसान देता है। तरकहुम फी जुलुमातिन का लफ्ज़ आता है ना, तरकहुम छोड़ दिया उसने उन सबको। तारीफुहुम बिसीमाहुम सूरत बकरा आयत 270, आयत नंबर 273 में आता है सूरत बकरा की। फिर इसी तरह याबुदून मिन दूनिल्लाही मा ला यदुर्रुहुम वला यनफ़ाउहुम सूरह यूनुस की आयत नंबर 18 है 18। और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उनकी जो ना इन्हें नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फेल की मिसालें आ गई है। तीसरी इसकी एप्लीकेशन होती है हर्फ के साथ। अगर हुम हुरूफ के साथ इस्तेमाल हो तो तर्जमा क्या है, वो सब इन सब, मसलन लहुम उन सब के लिए। अब आपको छोटा सा एक फ़र्क समझ आ रहा है जो शुरू में स्टूडेंट्स को नहीं आता। कभी तो जी आप हुम का मैनी वो करते हैं, कभी उनका करते हैं, कभी अपना करते हैं। अब आपको पता चल रहा है कि कोई चीज़ किसके साथ लग के आ रही है। आपको एक छोटी सी घरेलू मिसाल से ये बात समझाती हूँ। अगर आप खाली गोभी बनाते हैं तो गोभी का एक और टेस्ट होगा ना। अगर आप गोभी के अंदर आलू डाल देते हैं थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है। और अगर आप गोभी में गोश्त डाल देते हैं बदल जाता है। गोश्त ही का बच्चा कीमा डाल दें, कीमा गोभी और आलू, कीमा गोभी और गोश्त और गोभी के टेस्ट में फ़र्क होता है। यही फ़र्क है यहाँ। बस ये समझ लें चीज़ आई किसके साथ है, आप बैठे किसके साथ हैं, आपकी सोहबत क्या है, आपकी दोस्ती किससे है। इंसान का रंग बदल जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। जिनके साथ आप होते हैं बिल्कुल वैसे ही होने लग जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा उठना बैठना, हमारा अखलाक, बातचीत, सलीके वाली चीज़ हो तो हमें ऐसे ही लोगों के साथ बैठना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल बेपरवाह और चलते फिरते खाने वाले बन जाएं और बातें भी करें और खाते भी रहें तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए कि ऐसा तो बहुत कॉमनली आपको मिल जाएगा। तो जहाँ हम देख रहे हैं कि हुम जब लगा हरूफ के साथ तो मानी उसके डिफरेंट हो गए, इन सब के मानों में आ गया। इसकी मिसालें हैं सूरत अल-अनाम आयत 127, 127 लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम, इन सब के लिए सलामती का घर है इनके रब के पास। फिर सूरत इब्राहिम की आयत 37, 37 में आता है वरज़ुक्हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून, इनको फलों का रिस्क दे ताकि वो सब शुक्र अदा करें। अब आप ये चीज़ फील कर रहे हैं ना कि लहुम लाम के हर, लअल्ला क्या है, हर्फ है ना। तो ये सारी हरूफ की मिसालें हैं। एक छोटा सा नोट है कि हुम कभी हिम भी हो जाता है, पीछे भी होता था, हुमा हिमा में बदला था, कुमा की माँ में बदला था, वही चीज़ आ गई। ऐसा सिर्फ पढ़ने में आसानी पैदा करने के लिए होता है, इससे मानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 72, 72 इन्नल्लज़ीना आमनु वहाजरू वजाहदू बिअम्वालिहिम वअन्फुसिहिम फी सबीलिल्लाह। अब आप देख रहे हैं कि हिम के लफ्ज़ आ गए ना, अन्फुसिहिम अम्वालिहिम। अब आपको ज़रा दूसरी तरह पढ़ के इसको देखे क्या बनता है, जाहदू बिअम्वालुहुम या बिअम्वालहुम, रुकना पड़ता है ना। तो अम्वालिहिम ऐसे जैसे वो फिसल के ही के साथ ली मिल गया ना, तो ईजीनेस के लिए होता है। इतनी बात क्लियर है जी सर?
फेल की समझ नहीं आई कि जी जैसे पीछे तो हमने देखा था कि वो पेश के साथ तो वो हुम था और वो एक उसकी जबर से सिर्फ हमने पहचान लिया उसको कि वो इन सब और अपना अपने कैसे होगा, लेकिन इसमें मुझे समझ नहीं आया कि इन्हें और इन सब को हमें कैसे पता चलेगा।
देखिए कि जैसे आप देखिएगा ना कि तर्जमा इन्हें उन्हें या उन सब को, एक ही बात है। ये ऐसे ही जुमला जैसे मैं आपसे कहूँ कि अपनी हम उर्दू में ये जुमले बोलते हैं, उर्दू में आप बोले ना इस जुमले के साथ कोई सेंटेंस बनाइए, इन्हें ये किताबें इन्हें उन्हें दे दें। मैं आपसे कहूँ कि सदफ ये सब पेज उन्हें दे दें, ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि आप उन्हें दे दें, वो कौन है ये नहीं है बल्कि कोई बाहर है और आपको मैंने कहा कि उन्हें दे दें। और अगर मैं आपसे कहूँ कि सदफ ये पेज उन सब को दे दें, नो डिफरेंस, सेम थिंग है, सिर्फ जुमले की सेंस होती है, कुछ इस तरह बोल लेते हैं कुछ इस तरह। और इस ये जहाँ भी या का लफ्ज़ आ रहा है ना, इसे मानी नहीं बदल रहा, सिर्फ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है। जैसे किसी ने मुझे असाइनमेंट बना के भेजी तो मैंने उनकी असाइनमेंट देखी तो मैंने फ़ौरन फिर उससे असेस किया कि ये मुझे लग रहा है कि बहुत ब्रोकन सेंटेंस है। फिर मैंने गौर किया तो ये, फिर मैंने जब उनसे बात की तो मैंने उन्हें कहा कि आपकी असाइनमेंट के क्वेश्चंस बनाने में स्टाइल राइटिंग का नहीं है, किसी की बात सुन के बोला हुआ जुमला है, क्योंकि आपको आदत है हर वक्त नोट्स लेती हैं, लेक्चर्स क्लास के सुनती हैं, तो अब आपने असाइनमेंट बनाई है, तो जुमले सीधे लिखने की बजाय आपने स्पीकिंग जुमले लिखे हैं और उसने इसको एडमिट किया, तो ये फ़र्क होता है। बाज़ लोग बिल्कुल, आप कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएँ, फिर दूसरा कहता है चले जाएँ आप यहाँ से, तीसरा कहता है कि यहाँ से आप चले जाएँ, तो बिल्कुल यही फ़र्क है, इससे मानी का कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब बिल्कुल हुम के बाद वही चीज़ कुम में, फ़र्क क्या होगा हुम और कुम में, रूल सारे वही हैं जी। कोई बता दे आप में से जी। बुशरा, आगे हमने पहले हुम को पढ़ा, अब हम कुम को पढ़ने लगे हैं, फ़र्क क्या है हुम और कुम का जी? हुम क्या था, हुम क्या था जी? वो थे गायब, गायब था, सीगा गायब था, जो लोग गायब हैं वो हुम में और जो मौजूद हैं वो कुम में, बाकी एवरीथिंग सेम होगी। ठीक है, ये भी इसम फेल और हर्फ तीनों के साथ आती है और सेंटेंस के आखिर में आती है। अच्छा, वो भी कहाँ आती हैं हुम? वो भी आखिर में ही आती हैं, लेकिन मुनफसिल हो, अलग हो, तो फिर बीच में आ जाती है। इसम के साथ इसकी मिसालें देखते हैं। अगर कुम इसम के आखिर में हो तो तर्जमा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या फिर अपना, अपनी, अपने होता है। ठीक है, मसलन अमवालुकुम तुम्हारे माल, औलादुकुम तुम्हारी औलाद, उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ, बनातुकुम तुम्हारी बेटियाँ। ठीक है, सूरत तगाबुन आयत 15 में आता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अब इसमें भी देखिए, अमवालुकुम व औलादुकुम, बेशक तुम्हारे माल और औलादे फितना हैं तुम्हारे लिए। फिर इसी तरह सूरत निसा 23, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ। सूरत निसा आयत 171, 171 में आता है, या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, अहले किताब तुम सब अपने दीन में गलूफ मत करो। ये लफ्ज़ क्या होता है गलूफ के? गलू, बहुत सारे लोग गलू पढ़ते हैं, जहाँ भी ये लफ्ज़ उर्दू में आप देखें ना, वाव पे जज़्म लगा दिया करें, गलू। ठीक है, तो बहरहाल ये तो एक साइड की बात थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सबके पीछे आ रहा है और तुम्हारी, तुम्हारे से मानी आ रहा है। किसका? गलूफ का, हद से गुजरना। दो दफ़ा कुरान में हमने इस पर बहुत डिटेल से बात सुनी है ना। फिर आगे देखिए, अफ़ाल के साथ मिसालें। अगर कुम फेल के साथ हो तो तर्जमा अमूमन तुम्हें या तुम सबको किया जाता है। आप बैठी रहे, आप बैठी रहे, बेटा बाहर जाइए जल्दी से अपने कमरे में। चलिए, मिनकुम, सॉरी, अफ़ाल को देख रहे हैं, खलकाकुम, यतबफ़ाकुम, रज़ाकाकुम, युसव्विरुकुम, इन सब में आप देखिए फ़ेल के आखिर में लग रहा है। सूरत अलनहल आयत 70 में आता है, वल्लाहु खलकाकुम थुम्मा यतबफ़ाकुम, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया फिर वो तुम सबको फौत करेगा। सूरत अनफाल आयत 26, व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और उसने तुम्हें तय्यब यानी हलाल रिस्क अता किया। ठीक है, बात वाज़ है, अब बात समझ आ गई हमें, सिर्फ हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। अगली इसकी एप्लीकेशन है हरूफ के साथ। हर्फ के साथ भी कुम का तर्जमा अमूमन तुम सब किया जाता है, मसलन मिनकुम, लअल्लकुम, फीकुम, लकुम। सूरत हूद आयत 38 में आता है, फ़इन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून, बेशक हम सब हम तुम सबका मजाक उड़ाएंगे जैसे तुम मजाक उड़ा रहे हो। सूरत अलराफ आयत 69 में आता है, फ़स्कुरु अला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून, बस तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो ये क्या था? कुम। कौन कौन से हो गए? हुम और कुम। पीछे क्या रह गया? तुम। ये अलामत अमूमन फ़ेल के आखिर में आती है। अब ये फ़र्क नोट कर लें कि तुम अमूमन फ़ेल के आखिर में आता है। ठीक है, अलबत्ता एक इसम अन तुम के साथ भी ये अलामत इस्तेमाल होती है और इसका तर्जमा अमूमन तुम सब, तुम सब ने किया जाता है। मिसालें देखते हैं, ज़लम तुम, आमन तुम, कसब तुम, हसब तुम। सूरत बकरा आयत 54, या कौमी इन्नकुम ज़लम तुम अनफुसकुम, ए मेरी कौम बेशक तुम सब ने जुल्म किया अपने ऊपर। सूरत इब्राहीम आयत 7, लईन शकर तुम लअज़ीद नकुम वलईन कफर तुम इन नाज़ाबी लशदीद। फिर इसके बाद देखिए, हुम और अंतुम के बाद अल वाला इस्म हो तो इस सूरत में ताकीद यानी ही का मफहूम शामिल हो जाता है और अगले लफ्ज़ से मिलाते हुए इन दोनों के کے میم پر پیش آ جاتی ہے. سننے میں نہیں بات سمجھ آ رہی, آیت کو دیکھیں گے تو بہت کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. سورۃ حشر کی آیت 20 یعنی 20 میں آتا ہے, اصحاب الجنتی ہم الفائزون, جنت والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم کے بعد ال آ رہا ہے نا, الفائزون, تو پھر تاکید کا معنی ہے, یعنی سینٹینس عربی سینٹینس میں کوئی فرق نہیں, ترجمے میں ہی آئے گا. اگر آپ یہ کہیں, آپ ذرا آیت پہ غور کیجئے گا جب میں پڑھوں گی, اصحاب الجنتی تل فائزون, پاسبل ہے نا, جنت والے کامیاب ہیں, لیکن بیچ میں ہم کہہ کے ہم نے کہا کہ وہ ہی کامیاب ہے, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ زور دینے کے لیے کہ صرف یہی کامیاب ہوں گے. آپ کہتے ہیں بچے کامیاب ہوں گے, یا میرے یہ بچے کامیاب ہوں گے, اور آپ یا کہیں کہ میرا یہی بچہ کامیاب ہوگا, تو فرق کیا ہے کہ باقی نہیں ہوں گے, یہ ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے سورۃ آل عمران آیت 139 میں آتا ہے, 139, وَن تُمُ لَا لَوْنَ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اور تم سبقی غالب ہونے والے ہو اگر تم مومن ہو. سورۃ فاطر آیت نمبر 15, 15, یا ایوہن ناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو. بات واضح, الحمدللہ. اگر تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ضرورت ہو تو پھر دونوں علامتوں کے درمیان واو کا اضافہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے. اس صورت میں بھی تم کی میم کو پیش دے سکتے ہیں. دیکھیں عام طور پہ تو تم پہ جزم ہے نا, لیکن پھر اس کو حرکت دینے کے لیے میم پہ پیش آ جائے گی, جیسے کہ اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم الفائزون میں میم پہ پیش تھی. یہ نہیں ہے کہ اصحاب الجنتی ہم الفائزون, میم کو ال سے ملانے کے لیے میم کو پیش دے دی گئی, تو یہاں بھی پیش دی جائے گی. مثلاً دیکھیے گا, قتل تم ہو, اصل لفظ کیا ہے, قتل تم ہو, واو نہیں تھا لیکن یہ واو بڑھا دی گئی آسانی کی خاطر. تم سب نے اسے قتل کیا. سألتموہن, تم سب نے ان عورتوں سے سوال کیا. جئتمونا, تم سب ہمارے پاس آ گئے. سقفتموہم, تم سب ان کو پاؤ. مثالیں ہیں قرآن پاک میں, سورۃ الاحزاب آیت 53, 53, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ, اصل لفظ پتہ کیا تھا, دیکھیے گا آیت کو, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ, وہ کوئی نہیں تھی, ٹھیک ہے, سَأَلْتُ میں نے سوال کیا, یا تم نے سَأَلْتُ تم نے سوال کیا. پھر اسی طرح سورۃ بقرہ آیت 191 میں آتا ہے, وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, اور قتل کرو ان کو جہاں تم سب پاؤ ان کو, تو یہاں بھی واو ایکسٹرا ہے. اور اسی طرح سورۃ الانعام آیت 94, 94, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى, اور تم سب ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے. تو اس میں یاد رکھنے والی باتیں, سمجھ آ گئی تو کوئی مشکل نہیں ہے, صرف یہ آپ کی ایک میموری کا ٹیسٹ ہے, یاد کرا کریں. دیکھیں جب ہم اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہیں نا, تو اس سے ہمارا ذہن بہت کھلتا ہے. میں کسی کا سن رہی تھی, کمپٹیشن تھا, اور اس طرح فرفر اسٹوڈنٹس جواب دے رہے تھے کہ مجھے رشک آ رہا تھا ان کے اوپر کہ کیا شارپ میموری ہے. ہم جب اپنے دماغ کو کام میں لانا چھوڑ دیتے ہیں نا, تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے چیزیں یاد کرنا. پہلے دور میں آپ کو تھا کہ چیزیں حافظوں میں ہوتی تھیں, ٹپس پہ کر کے لوگ حساب بتاتے تھے. اب جتنا ہم آج کے دور میں ڈیجیٹل چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں, ہماری میموری خراب ہو رہی ہے. تو میموری جس چیز کو استعمال نہ کرے وہ ختم ہوگی. آپ اپنا گول بنائیں کہ ابھی جیسے ہمارا یہ ٹاپک نمبر 9 چلا ہے, اگلا 10 شروع ہونے سے پہلے یہ 9 میں نے پورے زبانی یاد کر لینے. بچے لوگ پورا پورا قرآن حفظ کر جاتے ہیں, یہ کون سی باتیں ہیں, اور یہ صرف سمجھ آ جائیں تو یاد کرنی آسان بھی ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اب یہاں اس کے بعد ہماری مشق نمبر 3 ہے, اس میں آپ کو پچھلے سارے ٹاپکس ملیں گے, اور بہت ہی مختصر سے سوال ہے, انشاءاللہ تعالی اس کو ہم سب مل کے کریں گے. آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس پورے کو کر کے لانا ہے. کوئی کوئسچن کلیئر ہے؟ الحمدللہ. چلیے سبحانک, جی آپ کا یہ اب آگے جو آ رہی ہے اسی کو کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے, ایکسرسائز نمبر 3. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.